27 मई शनिवार का नमस्कार भारत, फैसल मोहम्मद अली से। मोदी सरकार के 3 साल पूरे, पेश की गई दावों की लंबी फेहरिस्त।
70 साल की आजादी में कुछ बातें जो अचीव नहीं कर पाए वो इन 3 सालों में अचीव कर पाए हैं।
वही विपक्ष ने एकजुट होने की कवायद में बढ़ाए चंद और कदम, लेकिन मिलेगी कितनी कामयाबी। विवेचना सुनेंगे उस केस के बारे में जिसने प्रधानमंत्री तक की दिलचस्पी जगा दी।
डिफेंस मिनिस्टर बीच में पड़ा, प्राइम मिनिस्टर बीच में पड़ा और लंबी इतनी बात हो गई। बहुत अजीब सा केस था, लव बिट्रेल, ऑनर, हाई क्लास क्राइम।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनते हैं बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र सरकार में आए कल 3 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एक रैली में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं दिल्ली में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया था। विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद मिस्र की वायुसेना हरकत में आ गई है। मिस्र की वायुसेना ने लीबिया में जिहादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने कहा है कि कॉप्टिक ईसाई समुदाय के लोगों को ले जा रही बस पर हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे शामिल लोगों को लीबिया के डेरना तट पर ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण दिया गया था, जहां पर बमबारी की गई है। अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि चरमपंथी देश को बांटने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मिस्र की अर्थव्यवस्था को और सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे दर्द के बावजूद हम सक्षम बने रहेंगे। हम मिस्र और इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया की तरफ से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया को इस राक्षस के सामने एकजुट होना ही होगा। ये हमले ट्रेनिंग कैंप और इन इलाकों के खिलाफ हमले की और आगे भी करने किए गए हैं और आगे भी हम ऐसा करने से नहीं हिचकेंगे। ये थे अब्दुल फतह अल सीसी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में स्थानीय लड़ाकों और संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार से जुड़े सुरक्षा बलों के बीच घमासान लड़ाई हुई है, जिसमें अधिकारियों के मुताबिक 28 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 130 लोग घायल हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की गई है और स्थानीय लड़ाकों ने जेलों पर हमला किया है, जिनमें कई जाने माने लोगों को रखा गया है। इनमें लीबिया के पूर्व शासक कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के पूर्व खुफिया प्रमुख अब्दुल्ला सुनेसी भी शामिल। G7 देशों के नेता पर्यावरण में बदलाव पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। सिसली में G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे नेताओं ने इस साल की बैठक को सबसे मुश्किल बैठक बताया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि G7 देशों के 6 सदस्यों ने अमेरिका को पेरिस जलवायु संधि का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप प्रशासन अभी भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार पर भी बाकी देशों की अमेरिका के साथ असहमति बनी हुई है। आज जी सात देशों के शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने इस बारे में ये कहा। जलवायु संरक्षण के बारे में हमने अमेरिका से बात की है और साफ कहा है कि हम इस पक्ष में हैं कि अमेरिका जलवायु संधि का समर्थन करे। हमने अपनी दलील रखी। मैंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को सही इस्तेमाल करने पर ही आने वाले समय में नौकरियों का बाजार टिका है, लेकिन इस वैश्विक संधि से विकासशील देशों, छोटे द्वीपों और अफ्रीका को काफी उम्मीदें हैं। लेकिन अमेरिका ने कहा कि अभी उसने फैसला नहीं किया है और वो इस पर काम करता रहेगा। बाकी सदस्यों ने भी अमेरिका के समर्थन के लिए कड़ी बहस की है। एंगेला मर्केल के शब्द। बीबीसी समाचार।
پچھلی تین صبحوں کی طرح آج یعنی شنیوار کی پہلی سبھا کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ ہوں فیصل محمد علی. نمسکار بھارت کاریکرم میں سواگت ہے آپ سب کا. کل یعنی 26 مئی کو نریندر مودی سرکار کو ستا میں آئے 3 سال پورے ہو گئے. اس موقع پر پارٹی نے ایک بڑے کاریکرم کا آیوجن کیا ہے جو بھارت کے کل 900 جگہوں پر آیوجت ہوگا. شکروار کو پردھان منتری اسم میں تھے جہاں وہ جنتا سے مخاطب ہوئے. حالانکہ دوسری طرف 26 مئی کو ہی درجن بھر وپکشی دل ایک بھوج میں ایک ساتھ نظر آئے. اسے وپکش کے ایکجٹ ہونے کے سنکیت کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ سنیں ایک رپورٹ واتسل رائے سے.
70 سال کی آزادی میں کچھ باتیں جو اچیو نہیں کر پائے وہ ان 3 سالوں میں اچیو کر پائے ہیں, اور اسی لیے ہم نے ان 3 سال کے ہمارے لوک سمپرک کے ابھیان کا نعرہ بنایا ہے, ساتھ ہے وشواس ہے ہو رہا وکاس ہے.
نیا نعرہ اور کیندر سرکار کے 3 سال کے کاریکال کے دوران ابھوتپورو کام کر دکھانے کا دعویٰ. بھارتیہ جنتا پارٹی کے ادھیکش امت شاہ کل کیندر سرکار کے 3 سال پورے ہونے کے موقع پر جب میڈیا سے روبرو ہوئے تو انہوں نے کہا کہ 3 سال کے دوران پردھان منتری نریندر مودی نے دیش کی سوچ کی اسکیل کو کامیابی کے ساتھ بدلا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پوری دنیا میں دیش کا مان بڑھا ہے. وہیں گواہاٹی میں ایک ریلی کے دوران پردھان منتری نریندر مودی نے دیش کے لوگوں کے پرتی آبھار ویکت کیا.
میں 3 سال میں بڑے سنتوش کے ساتھ, بڑے گرو کے ساتھ 125 کروڑ دیش واسیوں کے سامنے سر جھکا کر کے اس بات کا گورو سے سویکار کرتا ہوں کہ یہ دیش 125 کروڑ دیش واسی ہر قدم پر ہمارے ساتھ چلے, ہر پرستھتی میں ہمارے ساتھ چلے. کڑے سے کڑے فیصلے ہم نے لیے, 125 کروڑ دیش واسی انہوں نے وشواس کو اور مضبوط بنایا.
کیندر سرکار اور بھارتیہ جنتا پارٹی جب اپنی اپلبدھیوں کا بخان کر رہے تھے ٹھیک اسی وقت وپکشی دلوں کے نیتا سرکار کے دعووں کو خارج کرنے میں جٹے تھے. کانگریس اپادھیکش راہل گاندھی نے سرکار کو دعووں کی کسوٹی پر فیل بتایا تو راشٹریہ جنتا دل پرمکھ لالو پرساد یادو نے اپنے ہی انداز میں چٹکی لی.
مودی کے شاسن میں پاکستان کا جھنڈا لہر رہا ہے جموں اور کشمیر میں, پاکستان کا جھنڈا, اور ہمارے سیما کے اندر آ کے پاکستان کے سینک ٹیررسٹ مار کے نکل جاتے ہیں.
کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی کی اور سے 17 وپکشی دلوں کے نیتاؤں کے لیے آیوجت بھوج میں حصہ لینے آئیں ترنمول کانگریس کی پرمکھ اور پشچم بنگال کی مکھیہ منتری ممتا بنرجی نے بھی سرکار پر نشانہ سادھا.
ایوری باڈی کریٹیسائز دا ہاریبل سچویشن ریگارڈنگ کشمیر سران پور اینڈ آل ڈیمونیٹائزیشن اینڈ دا ٹارچر دا ظلم دیٹ دے ہیو ڈسکسڈ آل.
ممتا کہہ رہی تھی کہ ہر کسی نے سرکار کی آلوچنا کی, کشمیر کی استھتی بھیاوا ہے, نوٹ بندی اور ظلم کے بارے میں ہم نے بات کی. کانگریس کی اگوائی میں وپکشی دلوں کی بیٹھک کا آیوجن راشٹرپتی چناؤ پر سہمتی تیار کرنے کے لیے کیا گیا تھا, لیکن راجنیتک وشلیشکوں کی رائے میں اس کا مقصد صرف اتنا بھر نہیں تھا. ورشٹھ پترکار پرمود جوشی کا آکلن ہے.
یہ ایک ساتھ آنا اس بات کو بتاتا ہے فی الحال کہ جو ورودھ کے جو دل ہیں بی جے پی کے ورودھی دل, ان کو اب ایسا محسوس ہونے لگا اکیلے یا چھوٹی سنکھیا میں رہ کر کے وہ کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے اور مہا گٹھ بندھن کے روپ میں بھی کوئی چیز نہیں لانی ہوگی. اور یہ 2019 کے چناؤ کے پہلے راشٹری استر پر کوئی مورچہ بنے گا ایسا ہمیں لگتا ہے.
سونیا کی میزبانی میں آیوجت لنچ میں دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال آمنترت نہیں تھے. وہیں بہار کے مکھیہ منتری نیتیش کمار نیوتا ہونے کے بعد بھی نہیں آئے. نیتیش کی پارٹی کی اور سے شرد یادو موجود تھے اور بہار کے مکھیہ منتری کے موجود نہ رہنے کا کارن بھی بتایا گیا, لیکن نیتیش آج پردھان منتری سے ملنے والے ہیں. ایسے میں وپکشی ایکتا اور سرکار کو گھیرنے کی سمبھاوت رڑنیتی کو لے کر اٹکلوں کا دور بھی جاری ہے. واتسل رائے, بی بی سی دلی.
3 سال پورے ہونے پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی سرکار نے جو کاریکرم آیوجت کیا اسے میکنگ آف ڈیولپنگ انڈیا بلایا جا رہا, جس کا شارٹ فارم ہے مودی. یہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جو پریوارواد اور ویکتیواد کو بڑھاوا دینے کے خلاف بات کرتی رہی ہے. ہمارے سہیوگی واتسل رائے نے بی جے پی کے نیتا ویریندر سنگھ سے پوچھا کہ آخر کار وہ ایک ویکتی کو اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کر رہی ہے.
दरअसल संसदीय राजनीति में नेतृत्व का भी एक बड़ा महत्व होता है, और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली पहली सरकार है कि 3 साल में कोई माई के लाल उस पर आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा। 1952 से चलने वाली जितनी सरकारें हैं, चाहे वो पंडित नेहरू की सरकार हो, चाहे उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार हो, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार को छोड़ के चाहे जितनी सरकारें बनी है, उन सरकारों पर कहीं ना कहीं आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस तरह ये पहली सरकार है जिस पर देश के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए देश की जनता ने जिस नेतृत्व पर भरोसा दिया था, उस नेतृत्व का नाम है नरेंद्र मोदी। 125 करोड़ जनता ने पहले फैसला कर लिया कि उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होगा तो सरकारी खजाने की लूट बंद हो जाएगी। तो देश की जनता पहले व्यक्ति को चुनती है, पार्टी उसके बाद अपने नेता को प्रधानमंत्री का घोषणा करती है। ये व्यक्तिवाद कैसे? देश की जनता ने पहले किसी व्यक्ति को चुना, और हमारे पार्टी के नेता है नरेंद्र भाई, तो नेता में जो गुण है वो कार्यकर्ताओं को उस गुण को बताना ही पड़ेंगे। इसकी बात नहीं है, व्यक्ति पूजा नहीं है। इस देश में जितने भी राजनैतिक दल हैं वो व्यक्ति केंद्रित हैं, हमारी पार्टी विचार केंद्रित है, और उसी विचार का जीता जागता तस्वीर नरेंद्र मोदी।
लेकिन जब आप मोदी फेस्टिवल मनाते हैं तो ये विचार पूजा है, व्यक्ति पूजा है, इसे आप किस तरह से डिफाइन करते हैं?
उस विचार का प्रतीक है तो क्यों नहीं बचाना चाहिए?
यानी आपको लगता है कि ये व्यक्ति पूजा नहीं है, विचार पूजा है, और मोदी
पूजा नहीं है,
विचार का नाम है।
पूजा करते हैं तो उसकी मर्यादा की पूजा करते हैं, तो राम जी की पूजा व्यक्ति पूजा थोड़े होती है, हमारी मर्यादा की पूजा होती है। कृष्ण के विवेक की पूजा करते हैं तो कृष्ण की व्यक्तिगत पूजा थोड़े होती है, उसके विवेक की पूजा होती है। शंकर की पूजा करते हैं तो उसके त्याग की पूजा होती है, जिसने पूरे दुनिया के लिए जहर निकल गया। नरेंद्र मोदी के कार्यों के कारण से पूजा होती है, तो सनातन परंपरा का शासन पक्ष का तस्वीर है, इसलिए उसके बारे में चर्चा होती है, पूजा नहीं होती।
3 साल पूरे होने के अवसर पर मोदी सरकार दावा कर रही है कि उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वे विपक्ष सरकार के दावे को खारिज कर रही है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे।
इस रिपोर्ट पर काम करने के दौरान कुछ विश्लेषकों लेखकों ने या तो बात करने से मना कर दिया या फिर कहा कि उनके पास 3 सालों में सकारात्मक बताने के लिए कुछ है ही नहीं। एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक इस सरकार ने पूर्व कांग्रेस कार्यक्रमों को मात्र आगे बढ़ाया या फिर उस पर ज्यादा जोर देकर काम किया। लेकिन दूसरा पक्ष ये कि योजना के बेहतर कार्यान्वयन पर पीठ थपथपाना क्या गलत है? सरकार के समर्थकों के अनुसार उत्तर पूर्व, आधारभूत सुविधाएं, विदेश मंत्रालय, इन सब में सरकार के काम को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही मोदी सरकार के 3 सालों में प्रदर्शन अगर शून्य था तो आप इसे कैसे समझाएंगे कि मोदी अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं और भाजपा मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीत रही है? इस पर तर्क मिलता है कि चुनाव जीतना सरकार के प्रदर्शन का सबूत नहीं है, यानी तर्क के बाद तर्क और उस पर एक और तर्क। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कार्यालय में मजबूती लाने का श्रेय दिया जाता है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल के दौरान आरोप लगे कि असली सत्ता सोनिया और राहुल गांधी के पास थी। राजनीतिक विश्लेषक मोहन गुरुस्वामी,
उन्होंने पीएमओ में एक डिसाइसिवनेस लाया है, ऐसा मालूम होता है कि महसूस होता है कि कोई हुकूमत सीरियसली कर रहा है उधर और सोच रहा है और क्या करना है। पहले पिछले 8-10 साल में ऐसा मालूम होता था कि वहां में कोई आदमी नहीं है, ऑटो पायलट पे चल रहा है गाड़ी, तो अब एक कंट्रोल पे एक आदमी आया है, वो उसका होना महसूस हो रहा है लोगों को।
उन दिनों को ना भूलें जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने वॉशिंगटन डीसी रवाना हो चुके मनमोहन सिंह की अनुपस्थिति में राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। आज प्रधानमंत्री का दफ्तर बेहद मजबूत दिखता है। कुछ समीक्षकों के मुताबिक इस सरकार में फैसले तेज हुए, इसका उदाहरण सड़कों के बनने के लिए जमीन अधिग्रहण में तेजी आदि फैसले दिखते हैं। गुरुस्वामी के अनुसार मंत्री डरे हुए हैं, मंत्री स्तर पर तेज काम हो रहा है, दिख भी रहा है कि रोड निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, रेल के काम में तेजी आई है। मनमोहन सरकार के पहले 5 सालों की जहां तारीफ हुई, माना जाता है कि दूसरे सत्र में इसकी दिशा गड़बड़ाई। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, चॉपर स्कैम, तत्रा ट्रक स्कैम, आदर्श स्कैम ने हेडलाइनें बटोरी। एक फिजा बनी कि सत्ता के गलियारों में दलालों का राज है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रेक्षकों के अनुसार मोदी सरकार के 3 सालों में ऐसी बात केंद्रीय मंत्रियों के बारे में सुनने को नहीं मिली और इसके लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए। मोहन गुरुस्वामी,
लाइसेंस और क्रोनिज्म की जो माहौल थी वो जरा खत्म हो गई। कोल लाइसेंसेस, कोल एलोकेशंस उसको ओपन किया है, 2G नेटवर्क्स को ओपन किया है, पहले सब बिडिंग शुरू हो गया, जो पहले जो एलोकेशन होता था वो बंद हो गया। इससे तो, और ये नहीं कह सकते अंबानी के बारे में बातचीत होती रहती है, मगर गैस प्राइस उनको जो चाहते थे वो मिला नहीं। थोड़ी बहुत अडानी के बारे में सुनते रहते हैं, मगर कुछ देखते नहीं हम कि क्या कुछ एलोकेट किया उनको।
ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड भीखू पारिक कहते हैं,
मनमोहन सिंह के जमाने में हर महीने कोई ना कोई स्कैम होती रहती थी, मोदी जी के जमाने में स्कैम कम है, या तो ये भी कहे कि अभी तक हमने ऐसे कुछ स्कैम नहीं देखी, तो उसकी हमारी इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त असर होती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि तरक्की हो रही है आर्थिक क्षेत्र में, अब बहुत दूर जाना है, बहुत गरीबी है।
जरूरी दस्तावेजों के स्वयं अटेस्ट करने को प्रक्रिया सरलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पासपोर्ट, परिचय पत्र, लाइसेंस, राशन कार्ड के आवेदन के अलावा कई महत्वपूर्ण कामों जैसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए पहले किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत होती थी, यानी उसे अटेस्ट करवाना पड़ता था। अब इसे बंद कर दिया गया है और लोग खुद अपने दस्तावेजों को अटेस्ट कर सकते हैं। इससे जिंदगी बेहद आसान हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में कई योजनाएं शुरू की हैं, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत। जहां इन योजनाओं के उद्देश्यों की तारीफ होती है, आरोप है कि मोदी ने पूर्व यूपीए सरकार की योजनाओं को दोबारा पैकेज कर नया नाम दिया। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार मिन्हाज मर्चेंट इसे बेहद बेवकूफी भरी दलील बताते हैं। हर सरकार अपनी पूर्व सरकारों की अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाती है और खराब कार्यक्रमों को बेहतर बनाती है या खत्म कर देती है। यूपीए ने आधार कार्ड कार्यक्रमों को खरीदा नहीं था, इसकी शुरुआत एक टेक्नोक्रेट ने की थी। ये थे मिन्हाज मर्चेंट। उधर लंदन में आर्थिक मामलों के जानकार सुनील पोशाक वाले कहते हैं,
तो आज ये जनधन योजना ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है देश के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जो पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की गरीब लोगों के लिए, और उसके अलावा जो इंश्योरेंस की स्कीम जो इन्होंने लागू की है, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा गरीब लोगों को हुआ है।
बचे 2 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। विश्लेषकों के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए नौकरियां, औद्योगिक उत्पादन ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारी निवेश और सरकार के ध्यान की जरूरत है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल का हासिल क्या है? अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आई थी बीजेपी, क्या वो सपना पूरा कर पाए हैं नरेंद्र मोदी? अपनी राय रखें बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 27 मई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब सुनिए आज की विवेचना भारतीय नौसेना के कमांडर कवास मानेकशॉ नानावती पर।
झूठे मूठे वादे वफाओं के गिना के अपने दीवाने को तू छोड़ गई, छोड़ गई।
ओजी,
ये क्या किया सिल्विया?
नानावती मर्डर केस लोगों की अंतरात्मा में इस कदर घर कर चुका था कि जब पिछले दिनों 50 के दशक की मुंबई पर एक फिल्म बनाई गई बॉम्बे वेलवेट, तो इसमें कवास नानावती की अंग्रेज पत्नी सिल्विया का जिक्र करता हुआ ये गाना भी रखा गया।
एक भवरे से नैन लड़ाके अपने पिया का दिल तोड़ गई, तोड़ गई। ये क्या किया सिल्विया?
किस्सा कुछ यूं था कि 27 अप्रैल 1959 को भारत के युद्धपोत INS मैसूर के सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कमांडर कवास नानावती कुछ दिन बाहर रहने के बाद जब वापस अपने घर लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी सिल्विया का हाथ अपने हाथों में लेना चाहा, तो उन्होंने उसे झटक दिया। आहत नानावती ने जब सिल्विया से पूछा, क्या अब तुम मुझे प्यार नहीं करती? सिल्विया ने कोई जवाब नहीं दिया। नानावती ने फिर जोर दिया, क्या हमारे बीच कोई दूसरा शख्स आ गया है? इसका जो जवाब सिल्विया ने दिया, उसको न सुनने के लिए नानावती पूरी दुनिया कुर्बान कर सकते थे, लेकिन कवास नानावती ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वो दोनों अपने कुत्ते को दिखाने डॉक्टर के पास लेकर गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लौटकर उन्होंने शोरबेदार कटलेट्स और प्रॉन करी और चावल का लंच खाया, और पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार नानावती ने सिल्विया और बच्चों को अंग्रेजी फिल्म टॉम थंब का मैटिनी शो दिखाने के लिए मेट्रो सिनेमा पर छोड़ा। उसके बाद नानावती अपने पोत पर गए। वहां से उन्होंने .38 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर निकाली और प्रेम अहूजा के घर पर जाकर उन्हें गोली से उड़ा दिया। उस समय अहूजा नहाने के बाद कमर पर तौलिया बांधे आईने के सामने कंघी कर रहे थे। इन हॉट ब्लड किताब की लेखिका बची करकरिया बताती हैं।
वो चीज खास तो मुझे ये अजीब लगी कि ये एक सिंपल मर्डर केस इतनी ऊंची पैरी तक कैसे पहुंच गया, जहां तक प्राइम मिनिस्टर नेहरू को प्रेस को जवाब देने पड़ा कि क्यों ये बात इतनी बढ़ गई है और क्यों पंडित नेहरू को बीच में पड़ने पड़ा। क्योंकि जब हाई कोर्ट ने नानावती को लाइफ सेंटेंस दिया तो 4 घंटे के बीच में बम्बई स्टेट का गवर्नर ने ऑर्डर दे दिया कि ये सेंटेंस को सस्पेंड करना चाहिए जब तक नानावती की अपील डिस्पोज ना हो, फिर इन्हे की अपील हर्ड ना हो। तो इसलिए बहुत चर्चा बढ़ गई और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बैठने पड़ा। सोचिए, एक अडल्टरी के वजह से एक खून हुआ है, ऐसे नहीं कि कोई बड़ी पॉलिटिकल खून हुई है, उसके वजह से पहले तो हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाना पड़ा और उसके बीच में डिफेंस मिनिस्टर बीच में पड़ा, प्राइम मिनिस्टर बीच में पड़ा और लंबी इतनी बात हो गई। बहुत अजीब सा केस था, लव बिट्रेल ऑनर हाई क्लास क्राइम, इसलिए उसमें दिलचस्पी अभी तक रही है।
उस समय भारत के चोटी के वकीलों ने दोनों पक्षों की ओर से अपनी दलीलें रखी थी। नानावती ने मशहूर क्रिमिनल वकील काल खंडालवाला की सेवाएं ली। बाद में रजनी पटेल, वाई वी चंद्रचूड़, नानी पालकीवाला, एमसी सीतलवाड और सी के दफ्तरी ने एक न एक पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा लिया। उस जमाने में अपना करियर शुरू कर रहे राम जेठमलानी को तो इसने राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया।
उस टाइम राम जेठमलानी तो जूनियर लॉयर थे और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं थे, क्योंकि ये क्रिमिनल केस में सेशंस कोर्ट में सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं जज के सामने और डिफेंस लॉयर के सामने। लेकिन प्रेम की जो बहन थी उसने राम जेठमलानी को हायर किया विद अ वॉचिंग ब्रीफ कि देखो कि मेरा बेचारा मरा हुआ भाई का इंटरेस्ट बिल्कुल ना बिगड़ जाए। और राम जेठमलानी उस टाइम भी बहुत होशियार थे, उन्होंने देखा कि ये डिफेंस कह रहा है कि बहुत बड़ा स्कफल हुआ है, उसमें गोली चल गई, लेकिन प्रेम आहूजा तो स्नान करके बाथरूम में से निकला था और उसने सिर्फ अपने कमर पर तौलिया बांधा था। और जब इतनी बड़ी स्कफल हुई और जब प्रेम मर गया और जमीन पर उसकी जो लाश मिली उस पर तो वो तौलिया वैसे के वैसे पड़ा था, तो राम जेठमलानी ने कहा कि जो इतना जो झगड़ा हुआ होगा तो कैसे वो तौलिया उस कमर पर अब तक रह गया। उस बात पे डिफेंस की इतनी बड़ी कहानी बिल्कुल नष्ट हो गई।
जब भी नानावती अदालत में सुनवाई के लिए जाते वो नौसेना की सफेद बुर्राक वर्दी पहने होते और उनको मिले तमगे उन पर चमक रहे होते। क्या ऐसा उन्होंने अपने वकीलों की सलाह पर जानबूझकर किया था?
बिल्कुल डिलीबरेट था, क्योंकि यू नो इट वाज लाइक वाव, यू नो एक तो वो थे ही लंबे चौड़े अपराइट 6 फुट टॉल, उसमें ये डैजलिंग यूनिफॉर्म मेडल्स, और वो आते थे भी क्योंकि दूसरी बात है कि कोई भी दिन पुलिस कस्टडी के बाद सीधा उसको नेवल कस्टडी में डाल दिया, जब ये पूरा सिविल क्राइम था, सिविल आदमी के ऊपर हत्या हुई है, सिविल जमीन के ऊपर हत्या हुई है, इसमें नेवी का कोई लेना देना बात नहीं था, तब भी उनको नेवल कस्टडी मिली जब तक ये पूरी चर्चा खत्म नहीं हुई और वो गए आर्थर रोड जेल में 1961 में। और तब डिफेंस लॉयर ने कहा कि देखिए, उन लोग दिखाने चाहते थे कि देखिए ये अपना नानावती तो इतना अपराइट आदमी है, वो देश की ड्यूटी में इतने महीनों तक जहाज पे दरिया में जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के उनकी बिचारी बीवी ये ऐसे प्रेम जैसे लोग में की यू नो की बात में फंस जाती है। तो उन्होंने बिल्कुल इट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल एक्ट, लाइक प्रेम सेड्यूसिंग नानावती वाइफ बिकेम ऑलमोस्ट लाइक सम अनपेट्रियोटिक एंटी नेशनल एक्ट।
इस पूरे मामले में मुंबई से छपने वाला अंग्रेजी टैबलॉयड ब्लिट्स खुलकर नानावती के समर्थन में उतरा। आजकल आमतौर से अपराधी का मीडिया ट्रायल किया जाता है, लेकिन तब ब्लिट्स ने पीड़ित का मीडिया ट्रायल कर एक नई मिसाल कायम की। सबीना गडियोक, جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک ایک کدوئی میڈیا ریسرچ سینٹر میں پروفیسر ہیں اور انہوں نے اس ہتیا کانڈ کے اس سمے کے میڈیا کوریج پر ایک لیکھ لکھا ہے.
The Nanavati case in a pre-television era, it was like a media event, کیونکہ it was something جہاں پہ it exploded, جہاں پہ بلٹس نے تو اس کو بہت بڑھا چڑھا کے ایکسپلوڈ کیا, اس کو بڑھایا, اس کو ون ایونٹ لیڈ ٹو اندر ایونٹ لیڈ ٹو, کیونکہ بلٹس نے ایونٹس پیدا کیے, لیکن وہ میگزینز میں, دوسری نیوز پیپرز میں, بعد میں فلموں میں اس کا ورنن کیا گیا ہے کہ وہاں پہ نانوتی ریوالورز لوگ بیچ رہے تھے, آہوجا ٹاولز بیچ رہے تھے, لڑکیاں کھڑی ہوتی تھیں جب وہ کورٹ میں جاتے تھے اور ان کے اوپر گلاب کے پھول پھینکتے تھے کیونکہ ہی واز اے ویری ڈیشنگ اینڈ ہینڈسم مین, پیپل ور ان لو ود ہم. تو ایک طرح کا یہ پہلا انڈیا کا میڈیا ایونٹ تھا. اٹ اکوائرڈ اے نیشنل امپورٹنس, ایک اسکینڈل acquired a national importance. Now, as far as I am concerned as an academic, ایک scandal ایک بہت interesting چیز ہے, کیونکہ scandal جو ہے آپ کو اس زمانے کی ایک historical moment کی moral transgressions یا moral آپ کہہ سکتے ہیں سیماؤں کو ورنن کرنے میں بہت یوزفل چیز ہے. آن دا فیس آف اٹ اٹ کین سیم کہ اسکینڈل ایک بہت ٹریویل چیز ہے, لیکن یہ جو اسکینڈل تھا کچھ اور طریقے کا اسکینڈل تھا. اس اسکینڈل نے ایک نیشنل لیول کا اٹینشن گریب کر لیا تھا اور آپ اس کی تلنا کر سکتے ہیں. ایٹ دس ٹائم پولیٹیکل ایونٹس بھی ہو رہے تھے, یہ ایک بہت ان ایونٹ فل ٹائم نہیں تھا. پاکستان کے ساتھ وار کی وہ باتیں شروع ہو رہی تھی 1962, چائنا کے ساتھ ایک اسٹرین ریلیشن شپ تھا, نارتھ ایسٹ میں پرابلمس تھی, اسٹیٹس کی ری آرگنائزیشن ہو رہی تھی, کمیونسٹ ہیڈ بین یو نو الیکٹڈ ان کیرلا. Given all that, it acquired a certain kind of national attention, of course brought on by Blitz.
یہ پہلا موقع تھا جب نوسینا ادھیکش ایڈمیرل کٹاری خود اپنے کینبرا ویمان سے اڑ کر ناناوتی کے پکش میں گواہی دینے ممبئی پہنچے تھے. پوری نوسینا اور یہاں تک کہ رکشا منتری وی کے کرشنا مینن بھی کھل کر ناناوتی کے سمرتھن میں آ گئے تھے.
نہرو نے پریس کو کہا کہ نہیں, ناناوتی کے کوئی فیملی نے ہم مجھے نہیں کہا کہ گورنر کو اس کو سسپینڈ کیا جائے اس کا سینٹنس, لیکن نیوی چیف نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ہمارا اتنا پرومسنگ کمانڈر ہے تو پلیز اس کو ذرا ہم لوگ کڈ گلوز سے یوز کریں. بٹ ڈیفینس منسٹر نے نیو یارک ٹائمس کے کورسپونڈنٹ کو کہا کہ نہیں, میرے انٹروینشن پر یہ سب بات ہوئی ہے, کیونکہ دا اسٹین آف ٹرپیٹیوڈ should not stain the career of such a promising young officer.
لیکن تمام جن سمرتھن کے باوجود کواس ناناوتی ساری قانونی لڑائیاں ہار گئے اور سپریم کورٹ نے انہیں آجیون کارواس کی سزا سنائی. لیکن ناناوتی کو ادھک سمے تک جیل میں نہیں رہنا پڑا. مہاراشٹر کی تتکالین راجیہپال وجے لکشمی پنڈت نے ان کی سزا سماپت کرتے ہوئے انہیں کشما دان دے دیا. 17 مارچ 1964 کو ناناوتی کو لوناولا کے ایک بنگلے سن ڈاؤن سے رہا کر دیا گیا. یہاں وہ ایک ایک مہینے کے پیرول پر پچھلے 6 مہینوں سے رہ رہے تھے. ناناوتی نے 3 سال سے بھی کم سمے جیل میں بتایا. جیل سے چھوٹتے ہی ناناوتی اپنی پتنی سلویا کے ساتھ کینیڈا جا کر بس گئے. وہیں 2003 میں ان کا دیہانت ہو گیا. ان کی پتنی سلویا ابھی بھی جیوت ہے لیکن اس مدعے پر کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی. ریحان فضل, بی بی سی دلی.
اور ایک بار ایک نظر ڈال رہی ہیں ہریتا اخبار.
آج کے اخباروں کی سب سے بڑی ہیڈ لائن میں سب جگہ دیکھ رہی ہوں, اس میں انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ کیندر سرکار نے ود کے لیے پشو ہاٹ اور پشو میلہ جیسے بازاروں میں مویشیوں کی خرید فروخت پر پرتبندھ لگا دیا ہے اور نئے نیم میں بیلوں, گایوں, بھینسوں اور اونٹوں کو شامل کیا گیا ہے. ٹائمس آف انڈیا نے خبر دی ہے کہ حملے کی منشا لے کر جو ہے بھارت میں لشکر طیبہ کے 20 سے 21 آتنکی گھسائے ہیں, ایسا خفیہ ایجنسیوں نے الرٹ دیا ہے اور دلی اور ممبئی میں اسے لے کر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. دا اسٹیٹمنٹ کی ایک ہیڈ لائن ہے, بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار شنیوار کو یعنی کہ آج موریشس کے پرمکھ انیرودھ جگناتھ کے سمان میں پردھان منتری مودی کے بھوج میں شامل ہوں گے. حالانکہ کل وہ سونیا گاندھی کے نیوتے پر نہیں آئے تھے اور اسے لے کر کئی طرح کی اٹکلیں ہیں. جنستہ نے اس پر ایک کارٹون بھی چھاپا ہے کہ سونیا گاندھی کے نیوتے پر نہیں آئے, لیکن انہوں نے نتیش کمار کہہ رہے کہ میں یہی ہوں آپ کے پاس والے کمرے میں.
بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کے لیے. اس کاریکرم کا تکنیکی پکش سنبھالا تھا دیوشیش کمار نے. فیصل محمد علی اور پوری ٹیم کو دیں اجازت. نمسکار.